आज खास इस माताओं के शिविर में आप सभी पधारे हुए माताओं का, भाइयों का बहुत बहुत इस मधुबन में स्वागत है। आज हम सब पहली शुरुआत करेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उर्मिला दीदी जी के प्रवचन से। आदरणीय उर्मिला दीदी जी, इंग्लिश में आपने एमए किया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप 1985 से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अनेक आध्यात्मिक अभियान जैसे भारत एकता युवा साइकिल अभियान, शिव संदेश रथ यात्रा अभियान, महिला सशक्तिकरण अभियान, मूल्यनिष्ठ मीडिया अभियान, ऐसे अनेक विभिन्न प्रांतों में तथा नेपाल में भी आपने ईश्वरीय सेवाएं की है। आपने अफ्रीका महाद्वीप में भी ईश्वरीय सेवाएं दी है। आपने अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी विभिन्न विषयों पर संबोधित किया है। बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक विपत्तियों में राहत शिविर लगाने का विशेष अनुभव आपके पास है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रिफ्रेशर कोर्स तथा विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपका सक्रिय योगदान रहता है और साथ साथ हम सबको पता है कि उर्मिला दीदी जी बहुत अच्छी लेखिका भी है। ज्ञानामृत पत्रिका जो हमारी हर मास निकलती है उसमें दीदी जी का लेख अवश्य होता है, जो स्त्रियों के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डालता है और हम सबके बीच में जागृति लाता है। तो आप बहुत अच्छी लेखिका भी है, आपके लेख बहुत परिवर्तनकारी होते हैं। तनाव मुक्त जीवन, व्यसन मुक्त जीवन, क्रोध मुक्त जीवन, माइंड मैनेजमेंट, ऐसे अनेक विषयों पर आप स्पीच देते हैं। क्लब सभागार, स्टील प्लांट, लिबर्टी शूज, अनेक कंपनीज में आपने अपने प्रवचन दिए हैं। तो ऐसे आज हम सबके सामने महान विभूति है आदरणीय उर्मिला दीदी जी, हम सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तो आज ऐसे ही हम सबके अंदर फिर से आप अपनी वाणी से जागृति लाएंगे तो हम उनकी वाणी सुनने के लिए उत्सुक है। पर दो शब्द आपके लिए मैं बोलना चाहूंगी आपके स्वागत में कि चल जाए आपकी वाणी का जादू जिस पर, दीदी जी चल जाए आपकी वाणी का जादू जिस पर, वो परमात्मा डोरी से खींचकर आ जाएगा माउंट आबू में। ऐसी प्रभावशाली वाणी हम सभी सुनेंगे। तो मैं दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि आज वो शिविर में अपना वक्तव्य हम सबके सामने रखेंगे। ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे शिव बाबा के इस शांतिवन प्रांगण में, डायमंड हॉल में आप सब बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में आई हैं। हिंदी में हम कहते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और यहाँ हम पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाई होती है, आप में से बहुत बहनें पढ़ी हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। स्पिरिट का अर्थ होता है आत्मा, और स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का मतलब है स्पिरिट इन रियलिटी, अर्थात आत्मा जब अपने वास्तविक स्वरूप में थी तो कैसी थी, वो बताने वाली यूनिवर्सिटी। हिंदी में हम कहते हैं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, और अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। तो आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ रहती है, क्या करती है, कैसे शरीर में आती है, कैसे शरीर को छोड़ती है, क्या उसका पुनर्जन्म होता है, क्या उसको पाप कर्मों की सजा मिलती है, इन सारी बातों का सिस्टेमेटिक अध्ययन, इसका नाम है अध्यात्म। और वो सारी बातें हम यहाँ सीखेंगे। आप सब जानते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में कुछ विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के भी मुख्य चार सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान, दूसरा सब्जेक्ट है मेडिटेशन, राजयोग अर्थात परमात्मा के साथ मन का कनेक्शन, और तीसरा सब्जेक्ट है डिवाइन वर्च्यूज, दिव्य गुण, उत्तम गुण, सद्गुण जीवन में धारण करना, और चौथा सब्जेक्ट है ईश्वरीय सेवा। ईश्वरीय सेवा में मानव की सेवा, प्रकृति की सेवा, सबकी सेवा आ जाती है। तो ये चारों सब्जेक्ट हम यहाँ पढ़ेंगे, उसमें से पहला जो सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान, इस ज्ञान के हम सब प्यासे हैं और इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु हमें ज्ञान दो। भगवान को प्रार्थना करते समय हम ज्ञान मांगते हैं क्योंकि हमको पता है कि सच्चा ज्ञान, असली ज्ञान उसी के पास है। नहीं तो दुनिया में तो आज ज्ञान का विस्फोट है, रिनेसांस ऑफ नॉलेज। आज हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ कितने प्रकार के अखबारें हैं, पत्रिकाएं हैं, लाइब्रेरीज हैं, टीवी के कितने सारे चैनल हैं, कितने रेडियो, एफएम रेडियो और कितने शिक्षा संस्थान हैं जो लोगों को ज्ञान देते हैं। लेकिन फिर भी हम भगवान को कहते हैं हमें ज्ञान दो, तो हम कौन सा ज्ञान मांग रही हैं? ज्ञान चाहिए तो किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, लाइब्रेरी में जाना चाहिए। भगवान को कहते हैं भगवान ज्ञान दो। तीसरा, नेत्र खोलो, रास्ता दिखाओ। इसका मतलब ये है कि जो दुनिया में ज्ञान है वो केवल इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं हैं, और सूचनाएं आदमी के भीतर ईगो पैदा करती हैं, अहंकार पैदा करती हैं। मान लीजिए किसी आदमी ने दो तीन अखबार पढ़ लिए या कोई न्यूज सुन ली और फिर किसी दूसरे को सुनाता है, वो कहता है जी मैंने तो ये बात सुनी नहीं, मैंने तो पढ़ी नहीं, तो सुनाने वाले को लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, देखो ये अज्ञानी है और मैंने तो कितनी सारी सूचनाएं इकट्ठी कर रखी। तो सूचनाएं बढ़ती हैं तो भीतर में नेगेटिविटी बढ़ती है, लेकिन सूचनाओं की भेंट में भगवान से हम क्या मांगते हैं? सच्चा ज्ञान, अविनाशी ज्ञान। और ज्ञान के लिए कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, अर्थात ज्ञान मनुष्य को नम्र बनाता है। ज्ञानी की असली पहचान है वो नम्र चित्त होगा, झुक जाएगा। इसलिए कहते हैं नमन्ति गुणिनो जनाः, नमन्ति फ्लिनो वृक्षाः, शुष्क काष्ठश्च मूर्खा न नमन्ति कदाचन। गुणवान आदमी झुकता है, फल वाला पेड़ झुकता है, सूखा पेड़ और ज्ञानहीन मनुष्य कभी झुकता नहीं है। तो भगवान से हम वो ज्ञान मांगते हैं जो हमें नम्र बनाए, झुकना सिखाए। और वो ज्ञान कौन सा है? वो ज्ञान है स्वयं का ज्ञान, स्वयं के रचयिता परमात्मा का ज्ञान, और इस सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान। वो ज्ञान हम यहाँ पढ़ेंगे। और उस ज्ञान में भी सबसे पहली पढ़ने वाली इम्पोर्टेंट बात है, मैं कौन हूँ, स्वयं का ज्ञान। मैं कौन हूँ, मेरे भीतर विचार कहाँ से आते हैं, ये विचार मन में क्यों उठ रहा है, मैं इस विचार को कैसे रोकूं, कैसे मोड़ूं, क्योंकि विचार बीज है। विचार को रोक दिया तो पेड़ भी नहीं बनेगा, नहीं तो कर्म रूपी पेड़ पैदा होगा। मैं एक विद्यालय में गई, एक टीचर बहन छोटे छोटे बच्चों को दुनिया का मैप दिखा रही थी। उस मैप में वो बता रही थी कि ये अमेरिका है, ये अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, ये यूके है, ये इसकी राजधानी लंदन है, ये फ्रांस है, ये इसकी राजधानी पेरिस है, ऐसे समझा रही थी। जब पीरियड पूरा हो गया तो मैडम ने हमको कहा कि आप इन बच्चों को जो सुनाने आए हो आप सुना दीजिए। तो हमने कहा, बेटा आप बच्चे तो बड़े होशियार हो, दुनिया का मैप जानते हो, पर आप ये बताओ कि इस शरीर रूपी मैप में आपका मन कहाँ है। तो बच्चे चुप हो गए। विचार कीजिए, बच्चों को दुनिया का मैप आता है लेकिन अपने शरीर का मैप पढ़ना नहीं आता। पहले किसको जानना जरूरी है, अपने आप को या दुनिया को? जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाना चालू करता है और कुछ समय के बाद अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी सीख जाता है, घर में आके बोलता है मम्मा दिस इज माई आई, और मम्मा तो इतनी खुश हो जाती है मेरा बेटा अंग्रेजी बोलने लगा, बेटा दोबारा बोल के दिखा। तो बच्चा फिर बोलता है मम्मा दिस इज माई आई, दिस इज माई ईयर, दिस इज माई टूथ, दिस इज माई लिप। तो मम्मा की खुशी का पारावार नहीं, और वो पड़ोस की आंटी को बुलाती है, आओ तो जरा देखो तो पप्पू अंग्रेजी बोल रहा है। तो वो भी आ जाती है, फिर पप्पू को कहते हैं बेटा दोबारा बोल के दिखा। तो बच्चा रिपीट करता है और पांच सात लोग और इकट्ठे हो जाते हैं, सब तालियां बजाते हैं, कोई जेब से निकाल के बच्चे को टॉफी देता है, हमारा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने बच्चे से पूछा वेयर इज योर माइंड, बेटा तुम्हारा मन कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है? नहीं पूछा। बच्चे की जो स्कूल की बुक है उसकी तालिका में मन की कहीं चर्चा नहीं है। बच्चे का टीचर भी कभी बच्चे से नहीं पूछता तेरा मन कहाँ है। ये पप्पू जब सुबह सो के उठता है तो उसकी मम्मा कहती है, बेटा ला तेरा मुख धुलाई कर दूं, आंखें धुलाई कर दूं। मम्मा कभी नहीं कहती ला बेटा तेरा मन धुलाई कर दूं। क्यों? क्योंकि आंखें तो लोगों को दिखेंगी, लोग कहेंगे फलाने के लड़के की आंखें गंदी, उसकी माँ उसकी आंखें नहीं धोती, मन किसको दिखता है, पढ़ा रहे गंदा। और मन तो मम्मा अपना भी नहीं धोती, बच्चे की बारी कैसे आए। ये पप्पू थोड़ा बड़ा हो गया, घर से बाहर जाने लगा तो मम्मा ने देखा इसके बाल उलझे हुए हैं और इसकी शर्ट के बटन ठीक से बंद नहीं है, तो बुलाती है, पप्पू इधर आ, ये तेरे बाल उलझे हुए हैं, उलझे हुए बाल लेके घर से बाहर नहीं जाते। लेकिन मम्मा कभी नहीं कहती तेरा मन उलझा पड़ा है, इस उलझे हुए मन को लेके घर से बाहर मत जा, पहले मन सुलझा। कंघी लेके पप्पू के बाल ठीक कर देती है लेकिन पप्पू का मन ठीक नहीं करती। शर्ट के बटन ठीक कर देती है लेकिन पप्पू के विचार ठीक नहीं करती। और ये पप्पू घर से बाहर क्रोध में भी निकल जाता है, ईर्ष्या में भी निकल जाता है, जिद करके भी घर से बाहर निकल जाता है, भूखा भी बाहर निकल जाता है, झूठ बोल के भी बाहर निकल जाता है, पैसे चुरा के भी बाहर निकल जाता है, अपशब्द बोल के भी बाहर निकल जाता है। वो चलेगा, बस बाल ठीक होने चाहिए, शर्ट ठीक होनी चाहिए, पैंट ठीक होनी चाहिए, जूते ठीक होने चाहिए। और धीरे धीरे ये पप्पू और बड़ा होता जाता है। अब मम्मा की जरूरत नहीं है, पप्पू अपने बाल आपे ठीक कर लेता है, अपनी टाई ठीक कर लेता है, शर्ट ठीक कर लेता है। और बाजार में ऐसी दुकानें खुल गई हैं, अगर पप्पू खुद ठीक ना करे तो पैसे दे दो, वो दुकान वाले भी ठीक कर देंगे। तो धीरे धीरे पप्पू बड़ा हो रहा है, बाल चमक गए, कपड़े चमक गए, जूते चमक गए, लेकिन मन बेचारा दिनों दिन अधिक क्रोधी, उत्तेजित, उग्र, व्यसनी, इस मन में कालिख लगती गई। बाहर चमक बढ़ रही है, भीतर कालिख बढ़ रही है, किसी का ध्यान नहीं है। हाँ मम्मा ये कहती है, अपना पप्पू बड़ा हो गया, बालिग हो गया, अब अपने पप्पू के पीछे एक जिम्मेवारी लगा दो। पप्पू बड़ा हो गया, आपको पता है जब घोड़ा बड़ा हो जाता है तो कहते हैं भाई इसके ऊपर सवारी करो और इसके पीछे एक गाड़ी जोड़ दो, अब ये गाड़ी खींचेगा, घोड़ा बड़ा हो गया। तो पप्पू बड़ा हो गया तो पप्पू के पीछे भी एक जिम्मेवारी लगा दो, इसकी शादी कर दो। मम्मा बड़ी खुश है, मेरे पप्पू की शादी होने वाली है। लेकिन पप्पू का मन, मन रूपी घोड़ा, वो तो छलांग लगाता है। आपको पता है पुराने जमाने में जब लोग घोड़ों पर सवारी करते थे, घोड़ा गाड़ी चलाते थे, तो ऐसा घोड़ा लिया जाता था जो सधा हुआ हो। घोड़ा बेसिकली जंगली जानवर है, अगर उसे सधाया ना जाए और उस पे सवार बैठ जाए तो वो सवारी को पटक देता है, और अगर उसके पीछे गाड़ी जोड़ दी जाए तो वो आगे वाले पांव ऐसे खड़े करके गाड़ी को उलट देता है। तो घोड़ा खरीदने से पहले मालिक से पूछा जाता था, ये घोड़ा सधा हुआ है, और मालिक भी घोड़े को सधाता था। कैसे सधाता था? जंगल में ऐसे एक राउंड बना देता था और उस राउंड के चारों ओर घोड़े को घुमाता था, उसकी नकेल पकड़ के लंबे समय तक ऐसे घुमाता घुमाता और फिर नकेल छोड़ देता था तो घोड़ा अपने आप घूमता था। मालिक कहता था, देखो अब ये भाग भी नहीं रहा, छलांग भी नहीं लगा रहा, अब ये सध गया। इस सधे हुए घोड़े को गाड़ी में जो तो काम में लगाओ, ये ठीक काम करेगा। तो हमने घोड़े को तो सधाया और मानव मन भी घोड़े जैसा है, लोग कहते हैं घोड़े जैसा तेज है, तो क्या उसको सधाने की जरूरत नहीं है? तो क्या हमने पप्पू के मन को सधाया, मन रूपी घोड़े को सधाया? पप्पू का मन तो सधा हुआ नहीं है और पीछे एक गाड़ी जोत दी। गाड़ी जोतते समय घर वालों ने खूब शगन मनाया, खूब पैसा खर्च किया, खूब नाते रिश्तेदार आए, लेकिन बाद में क्या हुआ, पप्पू अकेला गाड़ी खींच रहा है और पप्पू का मन उलट बाजियां कर रहा है, इच्छाएं हैं, चंचलता है, स्थिरता नहीं है, जागने की शक्ति नहीं, काम करने की शक्ति नहीं, बोलने का सलीका नहीं, क्रोध बहुत जल्दी आता है, व्यसन लगे पड़े हैं। तो अब क्या कर रहा है, गाड़ी पलट रहा है। ऐसा क्यों हुआ? हमने तो कहा था कि ये गाड़ी पीछे जोड़ देंगे, हम गंगा नहा लेंगे, लेकिन हम तो गंगा नहाए नहीं, क्या हुआ, ऐसा क्यों हो गया? बहनों, मैं सच कह रही हूं, गाड़ियां पलट रही हैं और माँ बाप गाड़ी पलटने से पहले जितने सुखी थे, ये पलटती हुई गाड़ी को देख के माँ बाप का क्या होता है? पहले कहते थे, बहन जी एक बार लड़के के पीछे गाड़ी जोत दें, फिर आपके आश्रम पे ही आके बैठ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? सोचा क्या था और हो क्या गया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो बीज था, मन रूपी बीज, उस बीज को संवारा नहीं। हमने दिखने वाली लुक को संवारा, लेकिन इस लुक के पीछे, इस लुक को बनाने वाले जो विचार थे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो बहनों, ये यूनिवर्सिटी है जो हमारे विचारों को संवारती है, और विचारों को संवारने की प्रक्रिया तो जन्म से पहले से शुरू हो जानी चाहिए। हमारे यहाँ एक तत्त्वीय उपनिषद है, तत्त्वीय उपनिषद में एक घटना का जिक्र आता है कि एक 8 साल के बच्चे को उसके पिता ने कहा, बेटा एक बीज लेकर के आओ। तो बच्चा एक चने का दाना लेकर आया। पिता ने पूछा, बेटा ये क्या है? बच्चे ने कहा, चने का दाना है। पिता ने कहा, नहीं ध्यान से देखो। बच्चे ने कहा, पिताजी चने का दाना है। पिता ने कहा, तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो, अच्छा इसको तोड़ो। बच्चे ने दाना तोड़ा, 2 टुकड़े हो गए, 2 दालें हो गई। पिता ने फिर पूछा, बेटा ये क्या है? बोला, पिताजी चने के 2 टुकड़े हैं, 2 दालें। पिता ने कहा, तुम ध्यान से नहीं देख रहे हो। और फिर अपने बच्चे को कहा, बेटा ये जो चने का दाना है, इसमें तुमको चने का एक पेड़ दिखाई नहीं दे रहा? हर दाने में एक पेड़ होता है, दिखता नहीं है पर होता है। और वो पेड़ कैसा बनेगा? जैसा ये दाना होगा। मान लीजिए इस दाने को कीड़ा लगा, तो पेड़ कैसा बनेगा? या तो उगेगा नहीं, उगेगा तो छोटा सा रह जाएगा, पूरा विकसित नहीं होगा। मान लीजिए ये दाना टूटा हुआ है तो भी वही बात होगी। मान लीजिए ये दाना अर्ध विकसित है तो भी पेड़ अर्ध विकसित बनेगा। और ये बात उस 8 साल के बच्चे के मन में पिता ने इतनी गहरी बिठा दी कि बेटा तेरा मन रूपी बीज इस शरीर का निर्माण करता है, जिसे आज हम कहते हैं मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट्स। मनुष्य अपने विचारों का प्रोडक्ट है, मनुष्य उसी प्रकार बनता है जैसे ब्रिक बाय ब्रिक भवन बनता है, थॉट बाय थॉट मानव बनता है। एज द थॉट सो द लाइफ, जैसा विचार वैसा जीवन। तो बेटा, पिता ने कहा तुम अपने विचारों पर ध्यान देना, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे विचारों में क्रोध का विचार तो नहीं है? अगर विचार में क्रोध होगा तो जीवन में तोड़ फोड़, हिंसा, नफरत, किसी से नाराजगी, किसी से शत्रुता पैदा हो जाएगी। इस बीज में क्रोध मत आने देना। काम, अगर बेटा इस बीज में काम पैदा हो गया तो भी तुम समाज के लिए एक भयानक चीज बन जाओगे। इस विचार में काम को पैदा मत होने देना। अगर तुम्हारे भीतर लोभ के विचार आए, तुम लुटेरे, तुम रिश्वतखोर, तुम झूठे, तुम लालची बन जाओगे। लालच के विचार मत आने देना। 8 साल के बच्चे को पिता ने बता दिया कि जीवन का निर्माण विचारों से होगा। ये हमारी पढ़ाई थी, ये भारत की शिक्षा प्रणाली थी। और एक छोटा बच्चा विचारों के महत्व को समझ करके हर घड़ी अपने विचारों की चेकिंग करता था। और भीतर के विचारों का प्रकाश उसके चेहरे पे आता था, उसका चेहरा मुदित, आनंदित, उमंग उत्साह वाला, खुशी, प्रेम, सबको सम्मान देने वाला, कर्मठ ऐसा बनता था। लेकिन चूंकि आधुनिक युग में विचारों पर ध्यान नहीं है तो परिणाम क्या निकल रहा है? मैं एक बार एक गांव में गई, गांव हो या शहर हो, लेकिन ये घटना एक गांव की है। तो जिस महिला के घर में मैं थी, उसने मुझे कहा कि बहन जी, मेरे बच्चे को भी आशीर्वाद दे के जाओ। तो मैंने पूछा बच्चा कहाँ है? सुबह के 10-11 बज गए थे, 10 और 11 के बीच का समय था। तो मुझे एक कमरे में ले गई, वहां एक गठड़ी पड़ी थी गोल गोल। बोला ये मेरा बच्चा है। मैंने कहा 11 बज गए, ये गोल गोल गठड़ी पड़ी, ये आपका बच्चा है? बोली हाँ, इसको आशीर्वाद दो। मैंने कहा सिर किधर है और पांव किधर है, पता ही नहीं पड़ रहा। आशीर्वाद तो सिर पे दिया जाता है। तो लगी हिलाने, वो पूरी गठड़ी हिल रही है पर अंदर से ना आवाज है ना मूवमेंट है, बस पकड़ के हिलाई जा रही है। तो मैंने कहा बहन जी, मेरा तो टाइम हो जाएगा, अब क्या पता है कब हिले डुले, कब आंख खुले। मैं सोचने लगी, नौजवान बच्चा 22 साल का होगा, 24 साल का होगा, और 11 बजे तक गोल गोल गठड़ी। ये किस बात का परिणाम है? और उठते ही फिर ये बना के दो, वो खाना है, ये करना है, कपड़े धुले चाहिए, प्रेस किए हुए चाहिए, गर्म पानी बाल्टी में चाहिए, सब चीजें रेडी चाहिए। ऐसे जैसे सरसों उगती है हथेली पे, और अगर ना मिला तो फिर क्रोध और फिर उत्तेजना और फिर घर छोड़ के भागना, बिना खाए भागना, और फिर माँ पीछे से हाथ पे हाथ रख के बैठेगी, मेरा बेटा तो बिना खाए चला गया। क्यों? इसलिए कि हमने खिलाया बढ़िया, पहनाया बढ़िया, लेकिन कौन सी चीज घटिया रह गई? कौन सी चीज घटिया रह गई? बीज, विचार, विचार घटिया रह गई। नहीं तो जब बच्चे को बढ़िया खाना खिला रहे थे, जब दूध की मलाई उतार के उसकी रोटी पे रख रहे थे, तब साथ में ये भी सिखा देते, बेटा सुबह 4 बजे उठने का बड़ा महत्व है, बेटा 4 नहीं तो 5 बजे उठना चाहिए, ये मलाई तब हजम होगी जब तू जल्दी उठेगा, तब ये तेरे शरीर को लगेगी जब तू जल्दी उठ के काम करेगा, दौड़ लगाएगा, तू स्वस्थ रहेगा, प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ेगा। एक चीज हमने बेटे को परोसी और दूसरी चीज हमसे छूट गई। कपड़ा बढ़िया पहनाया, 15 जेबों वाली जींस उसके लिए खरीद के लाए, और कई पड़ोसनों को दिखाई, आज मैं बाजार से 15 जेबों वाली जीन अपने बेटे के लिए लाई हूँ, देख के तो जा। कई हाथ लगा लगा के देख के गई, कितने की आई, कौन सी दुकान से लाई, इसको पहन के तो पप्पू बहुत ही सुंदर लगेगा। लेकिन हमने बेटे को ये नहीं सिखाया कि इन जेबों में डालना क्या क्या है, और उन 15 जेबों में वो बच्चा गुटखा भी डाल सकता है, सिगरेट भी डाल सकता है, किसी के फोटो भी डाल सकता है, किसी के पत्र भी डाल सकता है, क्या क्या डालेगा पता नहीं। जीन खरीदने से पहले बच्चे को ये पाठ पक्का कराना था, बेटा इन 15 जेबों में क्या क्या डालना है। सेवा, संस्कार, सद्गुण, माँ की कदर, बाप की कदर, भाई बहनों से मीठा बोलना, पड़ोसियों के साथ मिलजुल के चलना, ये सारी चीजें जेबों में डालना, आज्ञाकारी रहना, समय पर काम करना, सच बोलना, बुरी चीज नहीं खाना, ये 15 चीजों की लिस्ट बना के उसे देनी चाहिए थी, ये सब इन चीज जेबों में डालना, फिर मैं तेरे को 15 जेबों वाली जींस ला दूंगी। बेटे का शरीर सज गया, मन नहीं सजा, तो उसकी तकलीफ किसको हुई? तो बहनों, ये यूनिवर्सिटी है जो मन के विचारों को पॉजिटिव और शक्तिशाली बनाना सिखाती है। लेकिन बच्चा तो वही देखता है जो माता पिता करते हैं, तो बच्चे को सिखाने से पहले किसको सीखना पड़ेगा? मुझे एक बात याद आती है, एक परिवार में एक छोटे बच्चे को स्कूल भेजा गया, तो स्कूल तो चला जाता था, घर में आके होमवर्क नहीं करता था, तो माँ परेशान, बाप परेशान, घर में आके बच्चा पढ़ता ही नहीं। तो बच्चे से पूछा गया कि तू पढ़ता क्यों नहीं है, जब तेरी मैडम ने काम दिया तू करता क्यों नहीं है? तो बच्चे ने कहा, मम्मी नहीं पढ़ती, पापा नहीं पढ़ते, मैं क्यों पढ़ूं? अब घर में कोई नहीं पढ़ता तो बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है, क्योंकि कर्म तो देख करके सीखे जाते हैं। आप देख लो, आप जब बर्तन उठा के रखते हो तो आपकी छोटी बेटी भी आपके साथ कटोरी उठाना चालू कर देती है, देखते हो ना? और जब आप कपड़े धोते हो तो वो छोटी बच्ची भी पास आकर के कम बाल्टी में से मग्गा भर के पानी डालना, कुछ ना कुछ करना चालू कर देती है। बच्चे तो देख देख के सीखते हैं। तो माता पिता को एक बच्ची अच्छी युक्ति समझ में आई, उस बच्चे की दादी गांव में रहती थी और ब्रह्मा कुमारी पाठशाला में जाती थी। तो जो लोग ब्रह्मा कुमारी पाठशाला में जाते हैं वो बुजुर्ग होने के बाद भी पढ़ाई पढ़ती, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी पाठशाला में बाबा की मुरली सुनाई जाती है और उस मुरली को माताएं बहनें डायरी में लिख के ले आती हैं, और जब भी घर में खाली बैठी होती हैं डायरी में लिखी मुरली को फिर पढ़ती हैं, या कोई मुरली पढ़ी हो उसको उठा के पढ़ती हैं। खाली टाइम में बाबा की कोई प्रवचन की किताब, कोई ज्ञान की किताब पढ़ती रहती। तो पुत्र और पुत्रवधु को एक आइडिया आया कि माँ को गांव से यहाँ बुला लेते हैं और माँ अपनी बाबा की किताबें पढ़ेगी तो इस बच्चे को भी दादी को देख करके पढ़ने का मोटिवेशन आएगा। तो माँ को बुला लिया गया, माँ शहर में आ गई, सुबह ब्रह्मा कुमारी पाठशाला में जाए और दिन में पढ़े और बच्चा देखे दादी पढ़ रही है तो अपनी किताब उठा के दादी के घुटने के पास बैठ के कहे, दादी तू पढ़ेगी तो मैं भी पढ़ूंगा, और माँ बाप की समस्या का समाधान हो गया। तो बहनों, आपको भी शिकायत रहती है ना, बच्चे होमवर्क नहीं करते? आप भी ये फार्मूला अपना सकती हैं। आप कहेंगे हमारी सास तो ब्रह्मा कुमारी में जाती नहीं है, तो आप जाना चालू कर दो। बच्चे के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं, तो ये क्या बड़ी बात है। आप बैठ करके पढ़ो, आपका बच्चा आपको देख करके ना पढ़े ये हो नहीं सकता। करके देखो इस एक्सपेरिमेंट को, ये बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट है। मेरी एक सखी है, उसने उसके तीन बच्चे हैं, अभी तो बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन जब उसके बच्चे छोटे थे मैं उससे मिलने गई और आधुनिक दुनिया के हिसाब से जिसे हम बड़ा घर कहते हैं वो एक बड़े घर की महिला है, उसका पति उस राज्य का मिनिस्टर रहा है, कभी मिनिस्टर बन जाते हैं कभी गद्दी से उतर जाते हैं फिर बन जाते हैं, वो तो चलता ही रहता है, पर वो मिनिस्टर रहा, वो एक मिनिस्टर की पत्नी है। मैं जब उसके घर में गई तो गहरा सन्नाटा। मैंने कहा तेरी तीन बच्ची हैं और घर में इतना सन्नाटा। तो उसने मुझे दो बातें राज की बताई। उसने कहा जब मेरी शादी हुई तो मैंने केवल बीए कर रखी थी, लेकिन बहन जी घर में नौकर चाकर तो काम करने वाले बहुत हैं, तो मैंने शादी के बाद इंग्लिश में एमए किया, उसके बाद मैंने हिस्ट्री में एमए किया और अब मैं ला कर रही हूँ। तो जब मेरे बच्चे स्कूल से पढ़ करके आते हैं तो मैं अपनी ला की किताबें पढ़ रही होती हूँ, बच्चे देखते हैं मम्मी पढ़ रही है, शांति से खाना खा के अपनी अपनी किताब लेके मेरे पास आके बैठ जाते हैं। तो मैंने पूछा आपको प्रैक्टिस करनी है क्या? तो बोला बहन जी पढ़ाई केवल नौकरी के लिए ही थोड़ी होती है, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी तो होती है। अगर मैं घर में खाली बैठी रहूंगी तो क्या करूंगी? सारा दिन या तो टीवी देखूंगी या पड़ोसियों के यहाँ जाऊंगी या किसी को बुलाऊंगी या फोन करूंगी, उससे अच्छा है मैं अपनी नॉलेज बढ़ाऊं। मेरे घर में टीवी नहीं चलता, मैं नहीं देखती, मेरे बच्चे भी नहीं देखते। और एक और राज की बात उसने बताई कि मैं एक बार आपकी शाखा में आई थी, मुझे कहने लगी आपको याद है आपने मुझे बहुत सारे चित्र समझाए थे और उसमें एक चित्र था जिसमें दिखाया था कि भगवान की याद में अगर माता खाना बनाती है तो बच्चे भी भगवान की याद में खाना खाते हैं, और माँ अगर खुशी से खाना बनाती है तो बच्चे भी खुशी खुशी से खाते हैं। मैं उस दिन प्रण करके आई थी कि मैं भोजन शांति से, प्रेम से और भगवान की याद में बनाऊंगी। मैंने अपने बच्चों को बाहर बाजार की न चीज लाकर के दी और न खाने के लिए मोटिवेट किया, न मैं खुद खाती हूँ, सब चीजें घर में बनाती हूँ, भगवान का ध्यान करके बनाती हूँ। नौकर नहीं बनाते, मैं बनाती हूँ, नौकर बाकी काम करते। इसलिए मेरे तीन बच्चे होते भी मेरे घर में सन्नाटा है, एकदम शांति है, मेरे बच्चों ने मुझे कभी इरिटेट नहीं किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जीवन में दो मूल्य इसने धारण किए, एक तो अपने को ज्ञान ग्रहण करने में व्यस्त किया और दूसरा भोजन परमात्मा की याद में बनाया। केवल दो बातों से ये अपने बच्चों से सुखी है, कोई शिकायत नहीं इसको अपने बच्चों से। तो मैंने कंक्लूजन यही निकाला, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख करके हमारे बच्चे ऑटोमेटिक करेंगे, क्योंकि मूल्य, सद्गुण, अच्छी बातें कभी भी सिखाई नहीं जा सकती, वो देख देख करके सीखी जाती है। वैल्यूज कांट बी टॉट, दे हैव टू बी कॉट। वो पढ़ाए नहीं जाते, वो देख देख करके सीखे जाते हैं, पकड़े जाते हैं। तो यहां हम ज्ञान में सबसे पहले मैं कौन हूँ, मेरा मन कैसे स्ट्रोंग बने, मेरा चिंतन कैसे पॉजिटिव बने, ये बात सीखेंगे। और दूसरा, मैं कहाँ से आया, मैं किसका हूँ। हम परिचय देते हैं, मैं फलाने की बेटी हूँ, फलाने की माता हूँ, फलाने की पत्नी हूँ, लेकिन किसी की माता, किसी की पत्नी, किसी की दादी बनने से पहले भी तो मैं थी, चलो एक छोटी बच्ची थी, लेकिन बच्ची या बच्चा बनने से पहले भी तो हम थे। वो हम कौन थे, वो हमारा असली रूप कहाँ से आया। अभी तो आप कहेंगे हम दिल्ली से आए, कि हम हरियाणा से आए, कि हम यूपी से आए, कि हम महाराष्ट्र से आए, लेकिन इस दुनिया में हम कहां से आए, वो हमारा असली घर, और इस दुनिया में हमें भेजने वाला हमारा असली पिता, वो कौन है, उसके बारे में भी हम यहां जानेंगे। जिसे मात पिता कह करके हम उसकी पूजा करते हैं, दुख में उसे याद करते हैं, वो कौन है, वो कहाँ है, जिसके आगे हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हमारी काफी आयु गुजर गई, लेकिन यहाँ हम सीखेंगे हाथ के अलावा उससे मन जोड़ना है। करंट कब आएगा? तार के साथ तार की गांठ बांधने से करंट आता है या तार के भीतर की जो तांबे की तार होती है उसको जोड़ने से करंट आता है? तो हाथ जोड़ना माना रबड़ को रबड़ से जोड़ना, और मन जोड़ना माना तांबे की तार को तांबे की तार से जोड़ना। तो यहां हम मन जोड़ना सीखेंगे और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सीखेंगे। ये सृष्टि कब शुरू हुई? कई बार हमारे मन में आता है फलाना बहुत अच्छा आदमी है लेकिन उसको दुख क्यों है, और फलाना बड़ा बुरा आदमी है लेकिन उसको इतना सुख मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा। जैसे आप कोई धारावाहिक देखते हैं उसकी कई किस्तें होती हैं। अभी आपने अशोका देखा होगा, मालूम नहीं सैकड़ों से भी ज्यादा उसकी किस्तें थी। उससे पहले आपने और कई देखे होंगे, रामायण देखी, महाभारत देखी। तो इस जिंदगी की भी 84 किस्तें हैं। और जब तक कोई शुरू से आखिरी तक ना देखे तब तक सच और झूठ का पता नहीं पड़ता, तब तक न्याय और अन्याय का पता नहीं पड़ता। हम तो केवल एक किस्त देख के शरीर छोड़ देते हैं और जब अगली किस्त हमारी चालू होती है पिछला हमें याद नहीं रहता। आज हम जिसके साथ अन्याय देख रहे हैं उसके साथ न्याय होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही हमारी किस्त पूरी हो जाती है, हम वो देख ही नहीं पाते। तो हमारे मन में ये भाव रह जाता है कि अच्छे आदमी से अन्याय हो गया और बुरे आदमी को भगवान ने बड़े वरदान दे दिए, लेकिन ऐसा नहीं। आपको यहाँ 84 किस्तें समझाई जाएंगी। सृष्टि कब शुरू हुई, पहला जन्म कब हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अभी ये 84वीं चल रही है, इसके बाद फिर पहली किस्त शुरू होगी, वो आप विस्तार से समझेंगे। तो ये इस यूनिवर्सिटी का एक सब्जेक्ट है ज्ञान, दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन अर्थात परमात्मा की याद। आप सब अपने अपने घरों में पूजा करती हैं, मंदिरों में भी जाती हैं, लेकिन आपकी शिकायत बनी रहती है कि जब हम पूजा करती हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है। हाथ तो जुड़ जाते हैं लेकिन मन नहीं जुड़ता है। तो राजयोग में आपको मन जोड़ने की विधि सिखाई जाएगी। विधि से सिद्धि मिलती है, सही विधि होती है तो सिद्धि अपने आप सामने आती है। और तीसरा सब्जेक्ट है दैवी गुणों की धारणा, सद्गुण जीवन में आए, मानव का सच्चा श्रृंगार उसके सद्गुण। तो मेरी एक एक इंद्री सद्गुणों को प्रत्यक्ष करे, मेरी आंखें आंखों की सुंदरता क्या है, आंखों का गुण क्या है, इनका गुण भी है और अवगुण भी है। गुण क्या है? किसी को नजर से निहाल करना, ये इन आंखों का गुण है। किसी पर कृपा दृष्टि बरसाना, देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं देवता की ऐसी नजर पड़ी मैं निहाल हो गया, महात्मा ने ऐसी नजर डाली मेरे बिगड़े काम संवर गई। ये इन आंखों की सुंदरता है। तो यहाँ आपकी आंखों में ये वाली ब्यूटी डाली जाएगी। पार्लर वाले तो आंखों को बाहर से सुंदर बना देते हैं, भुएं सुंदर बना देते हैं, काजल वाजल लगा देते हैं, वो भी सुंदरता है बाहर की, लेकिन भीतर वाली भी तो चाहिए। एक से काम नहीं चलता ना। आंखें बाहर से सुंदर हो पर क्रोध भरा हो, ईर्ष्या भरी हो और किसी को नजर लगा दी तो काम चलेगा क्या? नहीं चलता ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है जहां आप आए हो, और इस ब्यूटी पार्लर का हेड है परमात्मा। और यहाँ इतनी सुंदरता दे देता है कि नारी लक्ष्मी बन जाए भीतर से भी और बाहर से भी। हम शादी ब्याह में या कई मौकों पे इतने सुंदर सज जाते हैं, लक्ष्मी को भी मात कर देते हैं। तो भगवान को पता है वो वाली कला तो इनके पास बहुत अच्छी है, लेकिन एक कला से काम कैसे चले? मान लो हमारे पास एक पांव हो तो हम कितना चल पाएंगे? बड़ी तकलीफ होगी एक पांव से चलने में। अगर कोई दूसरा पांव भी दे दे तो दौड़ेंगे। पंछी के पास एक पंख हो तो कैसे उड़ेगा? दूसरा पंख लग जाए तो उड़ने लगे। कैंची का भी एक फलक हो तो किसी चीज को काटती नहीं है, दोनों फलक हो तो काम करती है। तो हमारे पास एक चीज तो है। भगवान ने क्या सोचा, अगर इन्हें दूसरी भी दे दी जाए तो ये कितनी सशक्त हो जाएंगे। इसलिए हर कर्मेंद्री को कान की सुंदरता, कान की सुंदरता है ज्ञान रतन सुनते जाना और भीतर इकट्ठे करते जाना, समाते जाना। बाहर से कान को हम सुंदर बनाना जानते हैं, लेकिन इसको रत्नों से भर लेना तो ये डबल सुंदर हो जाएगा। और नाक की सुंदरता वो भी हम जानते हैं बाहर से, लेकिन मेरी नाक सदा ऊंची रहे और मेरे कारण मेरे परिवार की नाक भी ऊंची रहे, मैं ऐसे अच्छे काम करूं, परोपकार के काम करूं, कल्याण के कर्म करूं। और फिर होठों की सुंदरता, बाहर की सुंदरता को तो हम जानते हैं, लेकिन मैं मुस्कुराऊं सबको देख के। कहते हैं मुस्कुराहट सबसे अच्छी मेकअप है। जब एक व्यक्ति मुस्कुराता है तो कितना सुंदर लगता है। फोटोग्राफर भी कहता है जरा मुस्कुराओ तो फोटो अच्छी आएगी, लेकिन अगर हम जिंदगी भर मुस्कुराएं तो जिंदगी कैसी बन जाए? तो वो वाली सुंदरता भगवान हमें यहां से देगा। और हाथों की सुंदरता क्या है, वाणी की सुंदरता क्या है, मीठा बोलना वाणी की सुंदरता, हाथों की सुंदरता दान सेवा, वो भी हम यहाँ सीखेंगे। तो ये हमारा तीसरा सब्जेक्ट है, दिव्य गुणों की धारणा, सद्गुण जीवन में आए। और चौथा सब्जेक्ट है सेवा। सेवा तो हम माताएं बहनें बहुत करती हैं, सबकी करती हैं, पशु प्राणी घर में जो भी है। लेकिन परमात्मा हमें एक नई प्रकार की सेवा सिखाएंगे, जिसकी हमने पहले चर्चा की। रामकृष्ण परमहंस ने सेवा का उपदेश दिया, तो किसी ने सवाल पूछा कि मैं सेवा तो करूं, लेकिन लोग मेरी सेवा का मूल्य समझें और मुझे ऑटोमेटिक इज्जत दें, मेरी सेवा को इज्जत दें, मुझे मेहनत ना करनी पड़े, इसका तरीका बताइए। तो रामकृष्ण परमहंस ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि देखो, जब एक फूल कली होता है, बंद कली, उसके पास कोई भंवरा नहीं आता, लेकिन जब वो कली खिल जाती है और उसमें खुशबू भर जाती है, मकरंद आ जाता है, तो भंवरे अपने आप दौड़ करके उसके पास आते हैं। तो यहाँ परमात्मा पिता भी कहते हैं, बच्चे जब आप गुणों से, ज्ञान से भरपूर हो जाते हो, तो ऑटोमेटिक आपकी सेवा की खुशबू फैलती है। सेवा का अर्थ है अपने गुणों का दान, ज्ञान का दान, शक्तियों का दान, आज समाज को इसकी सेवा है। थोड़े दिन पहले मैं एक शहर में गई और वहां की बहन मुझे स्टेशन पे लेने आई। मॉर्निंग टाइम था, सुबह के 4 बजे। मैंने उस बहन को कहा था कि मैं 4 बजे ट्रेन से उतरूंगी तो आप मुझे वहां बैठी मिलना। मैं ट्रेन से उतरी और वो सचमुच बैठी थी, उठ के आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसके साथ साथ एक कुली भी आया। कुली मेरा सामान उठाने लगा तो उस बहन ने कहा, नहीं भैया, हम अपने आप उठा लेंगे, आप मत उठाओ। तो कुली ने कहा, बहन जी मैं कौन से आपसे पैसे ले रहा हूं, उठाने दो मुझे। ऐसे कहके उसने मेरे हाथ का बैग भी ले लिया। तो उस बहन को मैंने धीरे से पूछा, बहन जी ये कौन है, ये तो कुली लग रहा, आप मना कर रही हो फिर भी कह रहा है कि मैं कौन से आपसे पैसे ले रहा हूं। तो मुझे कहने लगी कि मुझे आपने कहा था जल्दी आ जाना, तो मैं गाड़ी बाहर पार्क करके और ठीक 3:30 बजे यहाँ प्लेटफॉर्म पे आके बैठ गई। और सुबह सुबह हमारा मेडिटेशन होता है 3:30 से 5 के बीच में। तो वो बहन कहने लगी, बहन जी मैंने सोचा कि मैं प्लेटफॉर्म पे बैठ के ही बाबा को याद कर लेती हूँ। मैं बाबा की याद में बैठी और मुझे 2 कुलियों की बड़ी तेज तेज आवाज सुनाई दी। सुबह कुछ आवाज तेज ज्यादा भी सुनती है। तो मैं उठ के देखा, ये तो दोनों झगड़ रही हैं। तो मैंने सोचा कि मेरा ये ज्ञान कब काम आएगा। तो मैंने उनको कहा, भाई आप तो दोनों ही एक जैसे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो, अगर आपकी बात बढ़ गई तो दोनों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, पुलिस कहीं होगी पकड़ ले जाएगी, इसलिए समझौता कर लो, शांति से बात को निपटा लो। क्योंकि मैं खुद शांति में थी और उस शांति के सागर की याद में थी, तो जैसा व्यक्ति खुद होता है असर पड़ता है। खुद के हाथ को मेहंदी लगी हो तो दूसरे को लगाना सरल होता है। तो कहा, बहन जी मेरी बात उनको ऐसी फिट बैठी, दोनों अलग अलग हो गए और इतनी देर में आपकी ट्रेन आ गई। तो ये एक मेरे बिना कहे आपका सामान उठा के चल पड़ा। तो जहाँ गाड़ी खड़ी थी, बहन जी ने गाड़ी खोली, उसने सामान रख दिया। हमने पैसे पूछे, उसने तो मना कर दिया। हमने कहा हमारा आश्रम है भैया, ज्ञान सीखने आना। बोला, बहन जी जब टाइम होगा तो आऊंगा, ये बता दो आप वापस कब आओगे। मैंने कहा मुझे तो दूसरी ट्रेन पकड़नी है, 2 घंटे में मैं वापस आने वाली हूँ। बोला मैं आपको ट्रेन में बिठा दूंगा। हमने कहा ठीक है, इतनी भीड़ में कहाँ ये हमें पहचानेगा, कहाँ हम इसको पहचानेंगे, पर कह रहा है तो ठीक है, हम तो वापस अपने सेंटर पे आ गए। 2 घंटे बाद वो बहन मुझे फिर लेके गई, तो उस गाड़ी का नंबर उसने पढ़ लिया। गाड़ी जब ऐसे गुजरी प्लेटफॉर्म स्टेशन के सामने से और पीछे पीछे दौड़ा, दीदी आ गई, दीदी आ गई, तो गाड़ी से उतारा, सामान उतारा, उस बहन को कहा बेंजिया भले चले जाओ, मैं बेंजी को गाड़ी में बिठा दूंगा। फिर मेरा सामान उठाने लगा तो दूसरा कुली आया, कहता है मेरी बारी है, बारी होती है कुलियों की, तो बोला मैं तो बेंजी को फ्री ले जा रहा हूँ, फ्री की बारी है, ले जाना है तो ले जा। तो वो कुली पीछे हट गया, इसने मेरा सामान उठाया और ले गया। मैंने कहा भैया तूने तब भी पैसे नहीं लिए, तू अब भी सामान उठा रहा है। बोला बहन जी आपको पता है सुबह सुबह उस बहन जी ने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला, एक छोटी सी बहन जी की वाणी ने एक बहुत बड़ा उपकार कर दिया, उसके बदले ये क्या है, मैं तो आपका बदला चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने एक प्रसाद का डब्बा उसे निकाल के दिया और मैंने कहा भैया ये बात एक दिन के लिए नहीं है, जीवन भर के लिए है, सदा याद रखना, शांति में बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं मन में सोचने लगी कि हम सेवा करते हैं, कई बार किसी को भोजन खिला देते हैं, सेवा है, भूखे को भोजन या किसी को वस्त्र देना, सर्दी में कंबल देना, ठीक है, लेकिन अगर किसी को हम ऐसा गुण दे दें कि उस गुण से जीवन भर के लिए उसमें शांति आ जाए, उसका क्रोध खत्म हो जाए, उसका झगड़ा खत्म हो जाए, तो ये उससे भी बड़ा दान है। क्योंकि भोजन तो एक टाइम पेट भरेगा, अगले टाइम वो फिर भूखा, कपड़ा एक बार पहनेगा फट जाएगा, फिर बेचारे को कपड़ा चाहिए। लेकिन अगर हमने किसी को चरित्रवान बना दिया, गुणवान बना दिया, तो वो चरित्रवान गुणवान व्यक्ति ना भूखा रहेगा और ना बिना कपड़े के रहेगा, क्योंकि जहाँ चरित्र की अमीरी है वहाँ चीजों की गरीबी कभी भी नहीं हो सकती। तो परमात्मा ये वाली सेवा करनी हमें सिखाते हैं, जो हमें यहाँ से सीख करके जानी है। बहनों आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी से पूरी डिग्री लेकर के जाएं और आप माताएं बहनें उस डिग्री से समाज को भी पढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। एक मिनट हम परमात्मा पिता की याद में बैठेंगे।